शांति, ओम शांति। बाबा क्यों आए हैं? हर रोज ये प्रश्न पूछा जा सकता है और बाबा हर बोली में भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं कि बाबा क्यों आए हैं। तो आज बाबा ने कहा है, मैं आया हूं भक्तों को भक्ति का फल देने। तो हम सभी कौन थे? बाबा कहते, तुम सभी कौन हो? तुम हो पुराने भगत, 84 जन्म लेने वाले पुराने भक्ति होंगे, क्योंकि जैसे द्वापर युग शुरू हुआ तो भक्ति तो हमने ही शुरू की, तो सबसे पुराने भक्त। तो भक्ति का फल देने आए हैं, लेकिन भक्ति का फल कौन दे सकता है? भगवान के सिवाय और कोई नहीं, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। भक्ति तो बहुत की, ढूंढा बहुत, पुकारा बहुत, अब बाबा कहते हैं तुम्हारी पुकार पर मैं आया हूं। जब बहुत दुख होता है तभी मैं आता हूं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल देता हूं। तो क्या है भक्ति का फल? ज्ञान। तो ज्ञान देते हैं। भक्ति में तो केवल अंधश्रद्धा है और बाबा आकर के ज्ञान देकर सदगति करते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये जन्म तुम्हारा कितना अमूल्य है, इसको व्यर्थ मत गंवाओ। हर मुल्ली में बाबा हमें इसकी भी सावधानी देते हैं कि तुम्हारा हर श्वास संकल्प सफल करना है। और बाबा ये भी कहते, तुम ब्राह्मणों से उत्तम हो, तुम ब्राह्मण देवताओं से उत्तम हो। देवताएं क्या सेवा करते हैं? वो तो बाबा कहते प्रलब्ध भोगते हैं, लेकिन सेवा तो तुम करते हो, तो तुम देवताओं से भी उत्तम हो, क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान हो इस समय और ब्रह्मा के मददगार बनते हो। तो आज की बाबा की मुरली सारी इसी पर है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य और इसके बाद फिर आज विशेष निर्वैर भाई के निमित्त यहाँ भोग लगाए, शिष्य में लगाएंगी। कल तो नीचे लगा ही लिया था और कुछ भाई बहने गए भी होंगे, लेकिन आज सुबह यहाँ लगाएंगे। आज 20/9/2025 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। चढ़ता है नशा। बाबा क्यों आए हैं? हम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सदगति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? बाबा कई बार कहते हैं तकदीर को लकीर लगाते हैं, आज बाबा कहते हैं तकदीर को शूट करते हैं, माना मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं। तो कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अब बाबा के तो बने, बाबा के घर में रह रहे हैं, बाबा की घर में सब कुछ पालना हो रही है, लेकिन सर्विस कुछ नहीं करते हैं, सेवा जरा भी नहीं करते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वो अपनी तकदीर को शूट करते हैं। केवल जो यहाँ रहते उनकी बात नहीं है, सबके बाबा के बच्चे बने। कितनी ऊंची तकदीर बाबा हमारी बना रहे हैं, पर उसके लिए सेवा तो करनी होगी, तो नहीं करते सेवा तो अपनी तकदीर को शूट करते हैं। अर्थात शूट करने का मतलब अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे, ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है न कि शरीर। सभी समझते हैं ना, हम आत्मा है न कि शरीर। और यह ज्ञान अभी ही मिलता है, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, ये ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। हाँ, आत्मा ने शरीर छोड़ा, फिर अगले जन्म में तो दूसरा शरीर मिलेगा, उसको आत्मा तो वही होगी। तो आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। शुरू से पहला पाठ यही है, अपने को आत्मा समझो, और अंतिम पाठ भी यही होगा। क्यों बाबा को बार बार कहना पड़ता है, जबकि कितना ज्ञान तो है ना मैं आत्मा हूं, लेकिन बाबा को घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है तुम आत्मा हो, आत्मा हो, भूलो मत। तो बाबा कहते हैं, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, बहुत भक्ति की, बहुत पुकारा, हाँ बहुत चिल्लाया, तो अब बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। ये भी किसको पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, ये किसको पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है, क्योंकि सत्युग तो है ही पुरुषोत्तम आत्माओं की दुनिया। तो जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है, इस समय तो सारा विश्व क्या है, पुरुषोत्तम का अपोजिट क्या है, सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। कहा पुरुषोत्तम और कहा एकदम कनिष्ठ पतित, उसको कहा जाता है, उस पुरुषोत्तम स्थान को कहा जाता है अमरपुरी, और ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी इस आसुरी गुण वाले मनुष्यों की दुनिया में भी, यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाला होगा तो उसके लिए कहा जाता है ये तो जैसे देवता है ना। कई शांत स्वभाव के होते हैं, कभी आवाज से भी नहीं बोलते, ऐसे भी है कई बहुत शांत स्वभाव के, कई भी उनकी आंख नहीं डूबती, चाल चलन बहुत अच्छी होती है। तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है, ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय तो सब है आसुरी गुण वाले, पांच विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं इस दुख से आकर के लिबरेट करो, परमात्मा को पुकारते हैं इस दुख से आकर लिबरेट करो। अब कोई एक सीता की तो बात नहीं है, राम ने सीता को छुड़ाया रावण की कैद से, लेकिन बाबा कहते हैं वो राम उसकी हम सब सीताएं हैं, तो एक सीता को तो नहीं छुड़ाया रावण की कैद से। बाबा ने समझाया है भक्ति को सीता कहा जाता है, भक्ति को सीता कहा जाता है, तो सारी जो आत्माएं सीताएं हैं, भक्ति है ना, भक्ति भक्त है, तो भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है। जो भक्तों को फल देने आता है उनकी भक्ति का, इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, एक भी छूटा हुआ नहीं है रावण राज्य में। उनको लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। अब रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, वो श्री राम की बात नहीं है, वो तो रघुकुल का राजा था, उनके कुल का नाम था रघुकुल, तो रघुकुल राज्य का वो राजा था। तो रघुपति, तो रघुपति के लिए क्या कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या थी उस रघुकुल की रीत, सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, ये थी उनकी रीत। और वो क्षत्रिय थे तो क्षत्रियों की यही उनके लिए यही कहा जाता है, वो जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका पालन करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ते नहीं है। तो रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, वो तो त्रेता का राजा था। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में हैं, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं तो किसकी पूजा नहीं करते, वो तो है ही पूज्य, फिर वो जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं पुजारी, फिर देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता, एक भी पूज्य हो नहीं सकता। हाँ, ये अथॉरिटी के बोल है, भगवान के सिवा और कौन ऐसे बोल सकता है कि कोई भी इस समय पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य फिर है, फिर उसके बाद कौन पूज्य, ऊंचते ऊंच भगवान सबसे पूज्य, फिर उसके बाद पूज्य है सतयुगी देवी देवताएं, वो भी पूज्य है। इस समय तो सब पुजारी हैं, तो पहले पहले शिव की पूजा होती है और उस भक्ति को क्या कहा जाता है, केवल शिव की भक्ति, उसको कौन सी पूजा कहेंगे, अव्यभिचारी पूजा, अव्यभिचारी केवल एक की पूजा, वो सतो प्रधान भक्ति। फिर सतो किसकी भक्ति कहेंगे, देवताओं की भक्ति, तो देवताओं की भक्ति है सतो भक्ति, शिव की भक्ति है सतो प्रधान भक्ति। फिर देवताओं से भी उतरकर जल की पूजा, मनुष्यों की पूजा, पक्षियों आदि की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है, अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, उस समय कोई रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ब्रह्मा कुमारियों को भी निमंत्रण मिला था, तो उन्होंने बहनों ने फिर बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ऐसी कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण मिला है, हमें क्या बोलना चाहिए, तो वो बाबा ने डिटेल बताया है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, सनातन धर्म हिंदुओं की होती है, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को फिर बुलाते हैं, बाहर के गेस्ट को भी बुलाते हैं, क्योंकि हरेक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना, हरेक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने कारण वो अपने को बड़ा समझते हैं। वास्तव में धर्मों में तो बहुत गुण सिखाए जाते हैं, कोई न कोई विशेष गुण होता, इसलिए हर धर्म का अपना अपना विशेष गुण है, तो इसलिए वो अपने धर्म को बहुत ऊंचा समझते हैं, वो अपने को बड़ा समझते हैं क्योंकि कोई न कोई उनमें गुण है। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होगी, 2 तो मशहूर है और भी होगी, बाबा कहते हैं 5-7 वैरायटी होगी। एक दिगंबर जैन होते हैं, दूसरे श्वेतांबर जैन होते हैं। तो दिगंबर जैन वस्त्र नहीं पहनते हैं, दिगंबर माना एकदम और वस्त्र नहीं, और जैन और जो श्वेतांबर जैन है वो तो अधिकतर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो 5-7 वैरायटी होगी, उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। नंगे बनने का अर्थ ये नहीं कि कपड़े नहीं पहनना, ये अर्थ नहीं समझते हैं। भगवानो वाच है नंगे अर्थात अशरीरी, अशरीरी आए थे फिर अशरीरी बनकर जाना है, वो फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवानो वाच के अर्थ को भी नहीं समझते हैं, नंगे आए थे नंगे जाना है इसलिए वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो भगवानो वाच का अर्थ क्या है कि आत्मा शरीर बिना आई थी, ये है भगवान ने कहा। तो भगवानो वाच का अर्थ ही नहीं समझते हैं, तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है, तो इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नई नई किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, है ना। झाड़ का जब अंत आता है, जर्जरी भूत अवस्था को पाता है, तो कितनी छोटे छोटे छोटी छोटी टालियां निकलती रहती है, तो वो तो अनेक मठ पंत इतनी निकलते रहते हैं, अनेक नई नई किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं। इसलिए इस कल्प वृक्ष को क्या नाम दिया है, वैरायटी धर्मों का झाड़। और फिर क्या कहेंगे, वैरायटी नाटक, ये वैरायटी नाटक भी है, वैरायटी धर्मों का झाड़ भी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती है, फिर वो जो शाखा निकली उसकी उपशाखा, फिर उपशाखा में से उपशाखा, फिर उसमें से और उपशाखा, तो एकदम ऊपर का जो हिस्सा होता है वो तो बहुत कमजोर होता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो तो कितना मजबूत होता है। तो बाबा कहते हैं तो हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी, अब्राहम ने इस्लाम, इस्लाम को जो अगर शुरू में माने तो जुडाइज्म कहते हैं, जू धर्म, वो सबसे पहले आया, फिर ये मोहम्मद तो बाद में आया। तो बाबा कहते हैं वैरायटी धर्मों का झाड़ है, हरे की अनेक ब्रांचेस निकलती है, मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है, अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं। अब अफ्रीका में पहले वो सब जो आदिवासी रहते थे, तो वहां के जो लोग है बिल्कुल आदिवासी, वो धर्म क्या है पता नहीं, फिर वो जो अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट है वो उसमें सब क्रिश्चियन मिशनरीज गई, क्रिश्चियन मिशनरीज गई और सारे क्रिश्चियन बन गए। वो नॉर्थ साइड जो है नाइजीरिया तरफ उस साइड, वहाँ मुसलमान गए, तो वहाँ वो सब मुस्लिम है। तो अफ्रीका में भी जैसे दो बटे हुए, ऊपर के ऊपर में मुस्लिम और नीचे क्रिश्चियन। तो बाबा कहते हैं अफ्रीका में कितनी साहूकार है, सोने हीरों की खानियां हैं, हाँ बहुत खानियां हैं वहाँ, बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। भारत में भी बहुत धन देखा ना, तभी तो कितनों ने चढ़ाई की भारत पर और भारत का धन लूटा। तो बाबा कहते हैं उस पर फिर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं, भारत में भी बहुत धन है परंतु गुप्त, अभी भी कोई कमी नहीं है भारत में धन की पर गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं, अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उस समय दिगंबर जैन वालों ने कॉन्फ्रेंस की थी, तो बाबा उसका भी वर्णन करते हैं। क्योंकि हरेक अपने को बड़ा समझते हैं ना, ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कब विनाश भी होना है ना, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में ऊंचा तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है, जिसका किसको पता ही नहीं है। तो वो उस समय सम्मेलन का नाम क्या था, जीवन में धर्म की आवश्यकता, ये उस समय वो कॉन्फ्रेंस का नाम रखा था। तो बाबा को उन्होंने पूछा, बाबा जीवन में धर्म की आवश्यकता है, तो वो जैन धर्म वाले तो अपना ही जैन धर्म बताएंगे, और हम लोगों को निमंत्रण मिला है तो हम फिर क्या बताएं। तो बाबा से पूछा, ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी तो विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो वास्तव में तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है, जिसका किसको भी पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वो है कुख वंशावली ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों में बाबा कैसे देखो, तुम मुख वंशावली ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो। वो भी जो समाज में जो वंश ब्राह्मण कहलाते हैं, वो अपने आप को बहुत ऊंच मानते हैं, और वो भी समझते हैं कि हम तो ब्रह्मा की मुख वंशावली है। अब बाबा ने दोनों का कॉन्ट्रास्ट किया है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वो है कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो फिर सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वो अपने आप को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं, तो ब्रह्मा तो एक ही पिता है उनका, फिर तो सब भाई बहन होने चाहिए। तो वो तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वो अपने आप को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर नहीं सकते। अब ब्राह्मण सब ब्रह्मा की संतान है मानो मानते हैं, फिर तो भाई बहन हो गए, क्योंकि पिता एक है सबका, तो फिर शादी भी नहीं कर सकते। भाई बहन कैसे आपस में शादी करेंगे। तो सिद्ध होता है कि वो ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। अब ये कौन बोल सकता है, अथॉरिटी बोल सकता है ना, तो ये भगवान ही बोल सकते हैं कि वो ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं है। चलो है कहलाएंगे, लेकिन कुख वंशावली है। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच तो ब्राह्मणों को कहेंगे, चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्य से देवता बनाते। हम जो ब्राह्मण है, चोटी है, ब्रह्मा की डायरेक्ट मुख संतान, हम ही फिर देवता बनते हैं और बनाते हैं। ऐसे भी भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही कहते हैं, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता आइए, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले। तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर, ये किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। ऐसे ब्राह्मण बने, अपने आप को बीके कहलाया, फिर जाकर के दुनिया में शूद्र बन गया, फिर कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने से बड़ी पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। इतना जल्दी पुराने संस्कार पलटते नहीं हैं, जो सचमुच दैवी संस्कार बने तो मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है, रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे, है ना, रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हथ कारडे दिल यारडे, हाथों से काम करो और दिल बाबा को दो। दिल यारडे हथ कारडे, ये है बहुत सहज। जैसे हाँ बाबा सहज क्यों कहते, फिर बाबा कहते मेहनत है। तो सहज कैसे है, जैसे आशिक माशुक, आशिक माशुक कैसे दोनों एक दो को याद करते हैं। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते। बाबा तो माशुक ही है, वो आशिक नहीं बनता है, वो माशुक ही है। आशिक तो सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि वहां तो दोनों एक दो के आशिक है, लेकिन बाबा केवल माशूक है, वो किसी पर आशिक नहीं होता है। क्यों क्यों किसी पर आशिक नहीं होता है? क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। अब आशिक किसी पर हो तो जिस पर आशिक है उनसे ऊंचा है, तो क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाकी आशिक वाले नहीं है किसी भी बच्चे का, लेकिन बाबा क्या है? बाबा कहते हैं, बाबा प्यार तो करते हैं ना हम बच्चों को, तो बाबा कहते हैं बाकी हाँ बच्चों की महिमा जरूर करते हैं, पर आशिक नहीं है। आशिक माना बस उसके बिना रह नहीं सकते, पर बाबा तो और ही बच्चों को भेजते थे, जाओ बच्ची सेवा पर जाओ, साओ सेवा पर जाओ। तो आशिक नहीं थे, परंतु जरूर प्यार से बच्चों को याद भी करते हैं। हाँ, दादी प्रकाश मणि बहुत अनुभव सुनाती थी। रोज मैं बाबा को पत्र लिखती थी, बॉम्बे में दादी रहती थी, हमारी टीचर थी, गामदेवी सेंटर पर हम जाते थे, तो दादी रोज शाम को पत्र लिखती थी बाबा को, और वो पत्र लेट फी पेड वो डालती थी, ज्यादा टिकट डालती थी, और सीधा ट्रेन में पहुंचाती थी, और अगले दिन बाबा के पास वो पत्र पहुंच जाता था। एक दिन दादी बहुत बिजी थी तो नहीं लिखा, अगले दिन लाइटनिंग कॉल आ गया बाबा का, बच्ची पत्र क्यों नहीं आया है आपका? देखो बाबा रोज याद करते थे, तो दादी बताती थी। तो बाबा कहते हैं बाकी हाँ बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो, हम सब आशिक उस माशूक के भक्ति मार्ग से ही हैं। भुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब वो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम, वो एक दूल्हा है, हम सब दुल्हने हैं उनकी, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर के छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आए धोखा देती है, सिविल आए बनने में मेहनत लगती है। आंखें दृष्टि इतनी शुद्ध हो जाए, बाबा कहते हैं उसमें मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, कितने चरित्रवान हैं देवताएं। अब ऐसा देवता बनाने वाला भी तो जरूर चाहिए ना। इस समय तो कोई भी देवता नहीं है जो किसी को देवता बनाए, तो ऐसा देवता बनाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। हाँ, धर्म की आवश्यकता मानव जीवन में, तो हर एक जो भी आए होंगे, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हुई होगी, कई धर्म वालों को बुलाया होगा, तो हर एक अपने अपने धर्म की उसमें महिमा करते हैं। तो मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता, अब ड्रामा को न जानने कारण मुंझे हुए हैं, किस धर्म की आवश्यकता है मानव जीवन में? तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके, क्रिश्चियन अथवा बोधी आदि को ये थोड़ी मालूम है, क्या नहीं मालूम है उन्हों को, क्रिश्चियन बोधियों को, कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे, ये उन्हों को पता नहीं है। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो कि वो फिर कब आएंगे, तो समझाना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता है, लेकिन कौन सा धर्म? हम तो अपनी महिमा करेंगे ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत आवश्यकता है, या आत्मा का धर्म शांति, उसकी बहुत आवश्यकता है, तो वो तो हर एक अपने अपने धर्म की महिमा करेंगे। तो समझाना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता है ना। भारत में कहते धर्म निरपेक्ष, तो धर्म निरपेक्ष माना हम धर्म को नहीं मानते, तो आपको जो चाहिए जिस धर्म को चाहिए मानो, परंतु धर्म निरपेक्ष कहने से फिर क्या होता है, धर्म आपस में लड़ते रहते, पर इसलिए बाबा कहते हैं सब अधर्म बन गए, मैं अधर्मों का नाश कर सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो अगर सत धर्म चाहिए तो वो एक ही होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। तो पहले पहले कौन सा धर्म था? तो सनातन धर्म, सनातन धर्म। पर सनातन देवी देवता धर्म, वो देवी देवता नहीं बोलते, सनातन धर्म जरूर कहते, हमारा सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन माना प्राचीन, बहुत पुराना। तो बाबा कहते हैं पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है कि कैसे धर्म नंबर वार आए। योग नहीं लगाते, योग बिगड़ ताकत नहीं आती। हाँ, तो अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, जो देवी देवता धर्म के है वो भी ये सब का बातें समझते हैं। योग नहीं लगाते, योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑल माइटी बनते हो, कितना सर्वशक्तिवान बनते ना। बाबा कहते तुम कितना ऑल माइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। इनसे तो कोई ऊंचा हो ही नहीं सकता, ऑल माइटी विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके, कोई किस पर चढ़ाई नहीं करता है सत्युग त्रेता में। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके, उस समय और कोई खंड होते ही नहीं है। अभी तो कितने खंड है, सब बंटते गए ना, अलग अलग होते गए, धर्म अलग होते गए, खंड अलग होते गए। पहले तो सब एक ही भारत था, अभी तो कितने खंड है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का ये चक्र है, बाकी सृष्टि तो कितनी लंबी चौड़ी है, वो थोड़े माप सकते हैं कितनी लंबी है धरती को थोड़े माप सकते हैं। चलो धरती को करके माप भी सके, सागर का तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब सागर में कितना पानी है, इतना वॉल्यूम, इतने सागर, 7 समुद्र कहते हैं, कितना जल होगा, अब उनको कैसे मापेंगे, कितना वॉल्यूम है सारे पानी का। चलो धरती को तो माप ही ले, तो सागर का तो कर न सके, आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि धर्म का मतलब ही है धारणा, जो धारण करने योग्य उसको धर्म कहते हैं। तो सारा चक्र बना ही है धर्मों पर, सारा चक्र धर्मों पर ही बना है। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता थी, उस समय उस धर्म पिता ने आकर के वो गुण का बखान किया, वर्णन किया, बढ़ाया, ताकि दुनिया की रक्षा हो सके, धर्मों को थमा सके। तो बाबा कहते हैं सारा चक्र बना ही है धर्मों पर, ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है हमारा जो कल्प वृक्ष है, बाबा कहते हैं ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। सब धर्मों का वर्णन है, अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान भी लगते हैं, वृद्धि भी होती है, तूफान भी लगते हैं। और तूफान लगते हैं तो बहुत पत्ते गिरते भी हैं। जब तूफान लगते कितने पत्ते गिरते जाते हैं। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं है, अब ये और बड़ी बात है, और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में तूफान लगते हैं और वो पत्ते झड़ते हैं। तो और धर्मों में क्यों तूफान लगने की बात नहीं है? तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनको तो ऊपर से आना है, वो कोई यहां से थोड़ी बनते हैं क्रिश्चियन या बुद्ध, वो तो ऊपर से उनके धर्म की आत्मा आती है, तो उसी धर्म में वो पक्के बन जाते हैं, कट्टर बन जाते हैं। और भारतवासी तो आदि सनातन धर्म के हैं, लेकिन फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो धर्म के पक्के नहीं रहते, और धर्म वाले तो कितने पक्के अपने धर्म में। तो बाबा कहते हैं उनको तो ऊपर से आना है उन धर्मों को। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है, पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है। तो हम सभी कौन है? हम सभी पुराने ते पुराना पुराने भगत है। पुराने ते पुराने भगत भी है, पुराने ते पुराने बच्चे भी हैं, पुराने ते पुराने देवताएं भी है, है ना? कितना नशा। तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का ये भी फल है, मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं हम आत्माओं को, अपने घर ले जाओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाओ, हाँ मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ये किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। अब अपने साथ ले जाओ तो बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि भगवान जब आएगा ले तो जाएगा, लेकिन फिर राज्य भाग्य देने वापस भी तो भेजेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो किसको पता ही नहीं कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं है, वो तो चाहते हैं मोक्ष को, बस हम जाएं और परमात्मा ब्रह्म में लीन हो जाएं, वापस इस सृष्टि पर आए ही नहीं, वो तो यही कहते हैं। वो चाहते हैं मोक्ष को। अब मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है, वर्षा तो जहाँ सुख शांति चैन प्रेम ये सारे गुण हो, मोक्ष हो गया तो खत्म, फिर तो उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, तो इसीलिए वो वर्षा तो नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं है, वो चाहते हैं मोक्ष हो। अब मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है, हाँ मुक्ति को वर्षा कहेंगे, घर जाएंगे थोड़ा विश्राम करेंगे फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो वर्षा है। तो मोक्ष को तो वर्षा नहीं कहा जाता है, खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष कैसे मिल सकता है? समझने की बात है, भगवान को भी आना पड़ता है, तो कोई आत्मा गई फिर वापस आए ही नहीं, ऐसे कैसे होगा? परमात्मा की आत्मा को भी आना पड़ता है, तो अपने तो पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं? हाँ बाबा भी नहीं रखेंगे किसको मोक्ष में कि वापस फिर कोई आए नहीं, भले अंत में आए पर आना जरूर है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को अब जानते हो, तुमको तरस पड़ना चाहिए। किस बात पर तरस पड़ना चाहिए? चक्र का राज समझाना चाहिए कि कैसे ये चक्र चलता है, कैसे धर्म वाले अनेक आते हैं। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। अभी क्राइस्ट आया 2000 साल हो गया, चलो 2025 कहते, परंतु फिर कब आएगा? हाँ 5000 साल से वो काटो। तो बाबा कहते हैं बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी तो होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। वो धर्म पिताओं ने जो सुनाया उस पर तो चलते ही नहीं है उसके धर्म वाले, कहाँ चलते हैं? कितनी अच्छी बातें सुनाई धर्म पिताओं ने, कोई कम अच्छी बातें नहीं सुनाई, पर उनके धर्म वाले कहाँ चलते? बुद्ध ने अहिंसा की बात कही, क्राइस्ट ने प्रेम की बात कही, लेकिन वो प्रेम कहाँ है, कहाँ वो अहिंसा है? इतनी हिंसा है बुद्ध धर्म में, बात मत पूछो, आप ईस्ट में जाइए क्या क्या खाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है, वहां तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। आत्माएं परम धाम में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा बन जाती है या परमात्मा कहलाती, वो आत्मा ही कहलाती है, तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे से ऊंचा भगवान। फिर सब है आत्माएं बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर वन देवता श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं है अमूल्य। अब देखो बाबा कहते देवताओं का जीवन अमूल्य नहीं है, क्यों? ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन क्यों है? बाप तुमको बच्चा बनाकर फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं, भगवान हमारे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। देवताएं क्या मेहनत करेंगे? देखो बाबा क्या कहते हैं, वो तो पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। या तो हम बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, औरों को ज्ञान देना, ये करना, कितनी सेवा करनी पड़ती है। अब देवताएं क्या सेवा करते हैं? वो बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है देवताएं। अब लक्ष्मी नारायण पढ़ाएंगे क्या अपने बच्चों को? वो पढ़ाने लिए फिर बच्चों को स्कूल भेज देंगे, स्कूल में जाके पढ़ो, वो टीचर पढ़ाएगा, माँ बाप नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, वो बाप टीचर गुरु तीनों ही एक है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए ऐसे बाप टीचर सतगुरु के लिए जो इतना दूर से आके पढ़ाते हैं। तो सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना बाबा को, हैंड्स। अभी भी कन्याओं के नीचे ट्रेनिंग चल रही है, 300 कन्याएं, तो बाबा कितने हैंड्स बन जाएंगे ना, सब सेंटरों पर आवश्यकता है। तो कई टीचर्स बहने अपनी कन्याओं को भेजते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी कन्या को वापस मेरे पास ही भेजना और जगह नहीं भेजना, हाँ, क्योंकि हमको जरूरत है। तो बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं, हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए भी जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं, क्योंकि उनको आर्मी में भर्ती होना है तो और तो कोई नौकरी नहीं कर सकता है ना, आर्मी में भर्ती होना है तो फुल टाइम आर्मी में रहना है, उनको नौकरी आदि तो सब छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके, मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगा। मिलिट्री वाले अगर मिलिट्री में भर्ती है, छुट्टी पर भी गया है, और अगर कोई जरूरत है तो छुट्टी भी कैंसिल करा के वापस बुला लेते हैं। अगर वो मना करे नहीं मैं तो छुट्टी पर हूँ अभी नहीं आऊंगा, तो उसको निकाल भी देंगे। और बाबा कहते यहाँ तो निकालेंगे नहीं, सेवा नहीं करते तो भी निकालेंगे थोड़ी, तो वहां तो निकाल देते मिलिट्री से। तो बाबा कहते हैं फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके, मना नहीं कर सकता है कि मैं नहीं आऊंगा वापस जॉब पर, नहीं आऊंगा अभी, तो मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं आएंगे, हम मैदान पर नहीं जाएंगे, युद्ध लड़ने लिए नहीं जाएंगे। हमारे पास भी एक मिलिट्री वाला भाई आता है, तो फिर वो लास्ट में उसको कहा कि हमको नक्सलाइट्स जहां है वहां मुझे अभी जाना है, तो सबसे छुट्टी लेके गया था ना, याद है ना, हाँ, सबसे छुट्टी लेकर के गया, तो गोसुन कमसुन की टोली लेके गया। फिर मेरे को कहता है दीदी कुछ वरदान दो, हाँ मैं सुरक्षित वापस आऊं, हाँ मुझे आप वरदान दीजिए, क्योंकि मिलिट्री का ऑर्डर आ गया तो मना नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ भेजना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान में नहीं जाएंगे, ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज करने वाले मना करने वालों पर फिर केस चलाते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है, अब वो कहेगा मैं सेवा नहीं करूंगा, अब चलो बैठो खाओ पियो ठीक है, सेवा नहीं करो तो वो फिर बाबा कहते वो अपने को शूट करते हैं, उनको कोई निकालता नहीं है लेकिन वो खुद ही अपने आप शूट हो जाते हैं। तो यहाँ तो वो बात नहीं है, यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आपे ही अपने को शूट करते हैं, खुद को ही मार डाला, पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। हाँ ऐसे नहीं कि कोई गोली मारते अपने को, लेकिन अपने पद को ही शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े योग में रहे तो अच्छा पद मिले, अपने पर रहम करना चाहिए, अपने पर करे तो फिर दूसरों पर भी करे रहम, अपने पर ही रहम नहीं करेगा तो दूसरों पर भी फिर कैसे करेगा रहम। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं, ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है, तो इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो बहुत मिलते रहते हैं, अभी तो कितने निमंत्रण मिलते रहते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। फिर वो कहते कि आप बस 5 मिनट बस समझाना। अब 5 मिनट समझाने के लिए बुलाते हैं, अब क्या समझा सकेंगे 5 मिनट में, 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। तो कहा होगा बाबा क्या समझाना है, ड्रामा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, पॉइंट्स तो अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं। बाबा डायरेक्टर भी है तो एक्टर भी है, डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ये करो ये करो, फिर वो खुद पार्ट भी बजाते हैं, फिर एक्ट भी करते हैं, पाठ ज्ञान सुनाते हैं, तो क्या एक्ट करते हैं भगवान, ज्ञान सुनाने का पाठ बजाते हैं, ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है। भगवान का सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ क्या है, ज्ञान देना। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरे, ड्रामा के एक्टर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर सब बाबा है, उनको न जाना तो क्या ठहरे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है, पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितनी भी हलचल हो, चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो, मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। ये ड्रिल करो। स्लोगन, अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। ना कह के मैं समर्पित हो जाऊं समर्पित हो जाऊं, तो बाबा कहते हैं पहले तो अपने जो विकारी स्वभाव संस्कार है वह कर्म है उसको समर्पण कर दो, तब कहेंगे कि यहाँ समर्पित हो गए। तो विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ के अंतर्गत, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। रूप नहीं लेती है, ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। बहुत जोर से युद्ध होता है फिर रुक जाता है, तो भड़कती आग फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाकी तो आप सबने कल सुन ही लिया होगा, हमारी बहुत अति मीठी लाडली सर्व की स्नेही अवधेश बहन, जो भोपाल जोन की जोनल हेड थी, उन्होंने कल अपना दिन में देह त्याग किया। काफी समय से बीमार थी और मधुबन भी नहीं आई थी काफी समय से, परंतु जब भी मधुबन आती थी, नीचे शांतिवन में सेवार्थ आती थी, लेकिन साथ में पांडव भवन कभी आना नहीं छोड़ती थी। सब जगह जाती थी, एक एक डिपार्टमेंट में जाती थी और चार धाम की यात्रा तो जरूर करती थी, सबसे मिलती थी, किसके मिले बिना नहीं जाती थी। तो ऐसी हमारी विशेष आत्मा ने कल 75 साल की आयु में देह त्याग किया, तो भोपाल जोन को महेंद्र भाई के बाद वो ही संभालती थी। अब हम उनके प्रति योगदान देंगे 3 मिनट और फिर निर्वैर भाई के प्रति भोग लगेगा। ओम शांति। जा रहे आप सभी जा रहे हैं, जो पट्टी में आए हुए आज जाएंगे ना, कोई बात नहीं, बाद में मिले।
सभी भाई बहने बैठे रहेंगे। आपको पहले भी बताया है,
शशि बना रहे
हैं, सभी बैठे रहे, कोई जाए नहीं। आप सबको पहले भी बताया था कि कल तो निवृत भाई जी के निमित्त शांतिवन में और अन्य स्थानों पर भोग लगाया गया। पांडव भवन में आज प्यारे बाबा के साथ निवृत भाई जी को भोग स्वीकार कराएंगे। आज का भोग ब्रह्मा भोजन जैसा ही है, जो सबको ही स्वीकार करना है। अभी भोग के लिए बैठे रहें और भोग के बाद जो बाबा का संदेश होगा वो सुनाया जाएगा। और निवृत भाई के निमित्त ये हमारे त्रिमूर्ति भाई सतीश भाई जो कल शांतिवन में थे, अभी अभी आके पहुंचे हैं, और हल्दर भाई और तीसरा निरंजन भाई, तीनों ही एक बहुत सुंदर अपने मन की भावनाएं गीत के रूप में प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके बाद भोग स्वीकार कराया जाएगा। और जो कलकत्ता वाले आज जा रहे, हाथ खड़ा करें भट्टी के भाई बहने, ठीक है। और ठीक है, जो कल जा रहे, कल जाने वाले, चल थोड़ी है। ओके,
ओम शांति। दयालु कृपालु और रहम दिल, प्रिय भ्राता निर्वै, सबके स्नेही और सहयोगी, ना किसी से वे, ना किसी से वे।
जब तक धरती और गगन, सूरज चंदा और पवन युगों युगों तक याद रहेंगे, वो भाई अनमोल रतन, सदा चाहा सबकी खैर, ऐसे थे भ्राता निर्वैर, रहा नहीं किसी से वैर, ऐसे प्रिय भ्राता निर्वैर, ऐसे प्रिय भ्राता निर्वैर।
आधार स्तम सदा साथ आपको पाएंगे, यज्ञ के आधार स्तम सदा साथ आपको पाएंगे, सबके प्रिय भाई जी याद बहुत ही आएंगे, आप अपने खूबियों से नाम से जाने जाएंगे, आप अपने खूबियों से नाम से जाने जाएंगे, सबके प्रिय भाई जी आपको भूल न पाएंगे, याद बहुत ही आएंगे, हमें याद बहुत ही आएंगे। दादियों के दुलार थे, बहनों प्रति सम्मान बड़ा, बच्चों के अंकल प्यार थे, साथी संरक्षक बने सबको दिए सम्मान है, निमित और निर्माण बन कितने किए निर्माण है, का सिपालना ऐसी काफिर पाएंगे याद बहुत ही आएंगे हम याद बहुत ही आएंगे शरण से ही सभी से नाता था पल के ऊंची से ऊंचा मन गर्व से ऊंचा माता था जब भी मिलते प्रेम हंसते फूलों जैसा खिलते थे जब वचन मुख से निकलते मोती जैसे झड़ते थे लाजवाब रूहे गुना ख्वाबों में भी मुस्कुराएंगे याद बहुत ही आएंगे हम याद बहुत ही आएंगे सबके साथी सेवा को दी ऊंचाइया मैं के बाल भुवन अमर यारों के लिए अमराइया उनको सेवा बाबा की नारुकी रुक पाएगी पर कमी नहीं रहेगी पूरी ना हो पाएगी खूबियों के चांद जहां जाएंगे जहां जगमगाएंगे याद बहुत ही आएंगे हम याद बहुत ही आएंगे यज्ञ के आधार सम सदा साथ आपको पाएंगे सबके प्रिय मेरे भाई जी याद बहुत ही आएंगे आप अपनी खूबियों से नाम से जाने जाएंगे सबके प्रिय मेरे भाई जी आप भूल आएंगे याद बहुत ही आएंगे हम याद बहुत ही आएंगे याद बहुत ही आएंगे हमें याद बहुत ही
जो भी माताएं जा रही हैं अगर आपको जल्दी है तो जा सकते हैं अगर टाइम है तो भोग में बैठें जल्दी है अच्छा जल्दी है तो जाएं अभी जो जिनको जल्दी नहीं है दोपहर को जाना है शाम को जाना है वह भोग में बैठ सकते हैं और इनको जल्दी है वो भल जाएं और केवल हम नहीं सब मधुबन निवासी और हॉल में जो भी भाई बहने बैठे हैं आप सबकी तरफ से निर्भय भाई को आपकी शुभकामनाएं श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करेंगे आप ये मत सोचना कि हमने फूल नहीं चढ़ाया बाद में आकर के भोग के बाद आप सभी जो भी स्टेज पर आकर के दृष्टि लेना चाहें
वो आ सकते हैं और दृष्टि लें, अपने मन की जो भी भावनाएं हैं वह भाई साहब के पास रख सकते हैं। और अभी हम सभी बाबा के पास जाएंगे और आप सबकी तरफ से विशेषकर मधुबन निवासी भाई बहने, हॉस्पिटल आबू निवासी और जो भी बीके भाई बहने हैं उन सबकी तरफ से बाबा को और निवा भाई को आपकी तरफ से भी याद प्यार देंगे। और फिर जैसे ही भोग का संदेश पूरा होगा और विवेक भाई निवा भाई जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि कविता के रूप में प्रस्तुत करेंगे और आप आकर के स्टेज पर आकर के अपनी दृष्टि के द्वारा अपनी भावनाएं उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। सबको खुला ही छुट्टी है, भोग के बाद सब आ सकते हैं स्टेज पर, लाइन में आकर के अपनी दृष्टि के द्वारा अपनी मन की भावनाएं जरूर प्रस्तुत करें। ओम शांति।
के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जाता वाकी सच्ची लगन से बन जाता वाकी तू गली बहार उड़ जा प्यारे वतन मेरे अंबर के उस पार ओ नीले अंबर के उस
तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पी।
ओम शांति। आज विशेष सर्व मधुबन निवासी हॉस्पिटल निवासी ज्ञानसभा निवासी आबू निवासी देश विदेश के सभी ब्राह्मण को भूषण की तरफ से मेरे भाई के निमित्त यात्रा लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन थी, कहां पर फूलों की, कहां रंग बिरंगे स्लोगन्स थे, कहां पर कार्ड थे, कहां चित्र दिखाई दे रहे थे, तो बाबा और निवे भाई बहुत प्यार से सब कुछ देख रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। निवे भाई बाबा को कहते हैं, बाबा ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, बच्चे इसको एक एक को ध्यान से देखो। तो निवे भाई उन सबको ध्यान से देखने लगे और चुपके से बाबा पीछे से छिप गए। वो अकेले देख रहे हैं और देख करके बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं और देखते ही देखते क्या देखते हूँ, सबकी जो ब्राह्मण परिवार की भावनाएं थी सब के सब वहां पर प्रकट हो गए। और निवेद भाई हर एक से बात करने में, उनको रूहान करने में, उनको अनुभव कराने में, कहीं तरफ पर तो विदेश के थे, कहीं मधुबन के, कोई हर एक जैसे, कहीं छोटे बच्चे कोई बूढ़े, सारे के सारे इतना मस्ती में मस्त कर रहे थे जैसे उनको भूल गया कि मैं साकार दुनिया में हूँ या अव्यक्त दुनिया में हूँ। तो उसमें बहुत ही प्यार से और सबसे इतना उमंग उत्साह से उनको उठा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद फिर बाबा आए। मेरा भाई कहते बाबा को, बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा को कहते ये सब क्या इतने अच्छे अच्छे बाबा के आपके बच्चे हैं, आप कहाँ थे, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बाबा ने कहा कि बाबा तो पीछे से देख रहे थे कि बच्चों का बाप के साथ तो प्यार है ही है और बाप की जो राइट हैंड है जो बड़े भाई के समान है उनके साथ उतना प्यार रिस्पेक्ट और भावना है वो आज सब प्रकट कर रहे थे। तो बाबा ने सबको इमर्ज किया और निवे भाई देख करके सबको कहते थे बाबा की तरफ देखो। और निवे भाई ने क्या किया, सबका हाथ पकड़ करके ऐसे किया हाथ, सबका हाथ जैसे बाबा के हाथ में दिया, कहा ये सब बाबा के कार्य में राइट हैंड बन करके चले और तब जा करके हमारा जो नया कार्य है नई दुनिया की स्थापना का वो सहज हो सकेगा। तो बाबा भी मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा सब राइट हैंड है और ये राइट हैंड को देख करके बाप भी बहुत खुश होते हैं। फिर मैंने कहा आप अभी क्या कर रहे हैं? तो भाई साहब कहते हैं वे भाई बाबा को, बाबा इनको क्या बताना हम क्या कर रहे हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा ये बच्चा एडवांस पार्टी के साथ नई दुनिया की स्थापना के जो गुप्त निमित्त हैं उन सबको मिल करके एडवांस पार्टी वाले सब मिल करके उनकी बुद्धि को टच भी करते हैं, पावरफुल भी बनाते हैं और उनको विशेष करके नई नई प्रेरणाएं देते हैं, खास करके माइक आत्माएं और जो साइंटिस्ट हैं और तीसरा जो इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन के लिए निमित्त बन रहे हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी शक्ति भरते हैं ताकि ये पुरानी दुनिया की सफाई हो सके। फिर मैंने कहा आपको मधुबन याद नहीं आता है? कहते मधुबन तो क्या, मुझे जो सारे विश्व के बाबा के बच्चे साथ हैं उनके पुरुषार्थ को देख करके हमें भी खुशी होती है कि इनका सूक्ष्म पुरुषार्थ हमारे कार्य को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। फिर मैंने बताया इस तरह से भोग लेकर के आए हैं। बाबा ने वो भोग का उठाया और निवे भाई को खिलाने लगे। निवे भाई ने कहते मैं पहले बाबा, फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे को खिलाएं। तो जैसे निवे भाई को खिलाने लगे तो कहते बाबा इन सबको खिलाओ। तो सबको बाबा ने अपने हाथ से भोग का ऐसे किया पहुंचा। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे भोग तो बाप ने खिलाया है, अब कुछ तुम भी तो कहो ना। तो कहते बाबा बता रहे हैं, बाबा ही तो कह रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा कुछ तो कहो। तो बोला सब को देख के बहुत खुशी है, प्रशारत में बहुत अच्छी है, लेकिन समय अनुसार ट्रस्टी और साथ में समेटने की शक्ति को धारण करें और सफल करें। समय ऐसा आने वाला है जो समेटना पहले से आरंभ करें और सफल करते जाएं, ताकि अंत में भी बाबा का साथ और हाथ रहे। ऐसा कहा फिर तो सब एडवांस पार्टी वाले, मेरे भाई वाले सब मिलकर के कहने लगे, सब याद करते हैं। कहा बाबा मेरे को बीच बीच में चक्कर लगवाते हैं और मैं हर एक बाबा के बच्चे को देख करके सदा ही ऐसा अंदा करता हूँ, सब बाप की गोदी में है और बाप की गोदी के खुशियों के झोले में झूल रहे हैं, झूलते रहे औरों को भी खुशियां बांटते रहे। फिर सबको याद दिया ओम। अभी जिनको भी दृष्टि लेनी है मंच पर आ जाए और विवेक भाई श्रद्धांजलि की दृष्टि लेकर के मंच पर लाएंगे और विवेक भाई श्रद्धांजलि की कविता सुनाएंगे। आप सुनो कहीं उधर आ जाओ, सुनो एक एक उधर दृष्टि लेके चलते चलो। भाई भी बहने भी जो भी आना चाहिए आ सकते। माइक दे रहे सब दृष्टि लेकर के वरदान लेकर के जाते हैं। रवि भाई इनको लाइन में करते हैं।
ओम शांति। प्रिय भ्राता निर्वैर जी को ये हम सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन है। प्रिय भ्राता निर्वैर जी हम अर्पण करते श्रद्धा सुमन, स्वीकार करे सम्मान, हृदय में बसाकर बाबा को आप बने बाबा समान, आप बने बाबा समान। सबके लिए मंगल भावनाएं लिए, सबके लिए मंगल भावनाएं लिए, नाम निर्वैर अनूप, योगी रूप में आपका था देवों सा स्वरूप। मनसा वाचा कर्मना बने, मनसा वाचा कर्मना से किया बेहद का महादान, हम अर्पण करते श्रद्धा सुमन, हृदय में लिए सम्मान। बड़ी लगन से आजीवन ईश्वरीय यज्ञ का विस्तार किया, सर्व का सहयोगी बनकर सर्व को प्यार दिया, महानायक बनकर संभाली आपने सेवाओं की कमान, हृदय में बसाकर बाबा को आप बने बाबा समान। विश्व मंच पर निभाया आपने अति उत्तम किरदार, अति उत्तम किरदार, गुण आपके प्रेम सेवा दया और उपकार, आपसे मिलकर मिलती थी सच्चे मानव की पहचान, हम अर्पण करते श्रद्धा सुमन, हृदय में लिए सम्मान, हृदय में लिए सम्मान। वहां वहां श्रेष्ठ कर्मों से क्या तकदीर आपने पाई, मधुबन की ये पावन बगिया स्वर्ग सी सजाई, आज हम भावों से भर कर रहे महिमा और गुणगान, हृदय में बसाकर बाबा को बने बाबा समान। सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में स्वमान का ऊंचा आसन, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा प्रभु हृदय पर था शासन, शिव से प्रीत कर्मेंद्रिय जीत नारायणी आपकी शान, हम हृदय में भरकर श्रद्धा को करते आपका सम्मान। सुख सागर बन सुख देने वाले आज भी जुड़ी है आपसे हमारे मन की तार, श्रद्धा सुमन अर्पित करता आज मधुबन परिवार, आपकी दिव्य सुगंध से
आपकी दिव्य सुगंध से महके गया सदा मधुबन का बागान, हम अर्पण करते श्रद्धा सुमन, हृदय में लिए सम्मान, हृदय में लिए सम्मान, हृदय में लिए सम्मान। शांति।